भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण के धाम श्री वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान में आपको सायंकाल के सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता से पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय उसकी चर्चा हमने शुरू की थी। कल कुंभ मेला इस 12 साल वाला महाकुंभ प्रयागराज में जनवरी से है 2013 से, तो उनके विषय में कल एक बैठक थी, इसलिए हमको वहाँ सेवा में जाना पड़ा। तो हमने पहले श्लोक को समझने का प्रयास किया था। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में जहाँ देवता कंस के कारागृह में माँ देवकी के उदर में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो उस प्रार्थना का पहला श्लोक है सत्यव्रतम, भगवान आप सत्य हो, आपसे जो निकलता सत्य है। तो उस श्लोक के अंत में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूछता है कि मैं अगर सत्य हूं तो क्या मेरी प्रकृति क्या है, क्या वो सत्य नहीं है क्या? तो वहां देवता दूसरा श्लोक बोलते हैं, ये वृक्ष प्रकृति रूपी वृक्ष की का आदि मूल आप हो, इस प्रकृति रूपी वृक्ष के आदि मूल आप हो। फिर तो ये आगे बोला है इसके दो इसके इसके चार फल है, इसके तीन शाखाएं हैं, तीन गुण चार फल पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और फिर इसके छह, इसमें परिवर्तन आता है, पैदा होता है, थोड़े दिन रहता है और पैदा करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर समाप्त होता है, समय के साथ परिवर्तन आता है, सात इसके कवरिंग है, ऐसे करके पूरा एक सुंदर श्लोक है जिसमें प्रकृति को वृक्ष कह रहे हैं देवता, और ये कह रहे हैं वो क्योंकि आप उसके जड़ हो इसलिए वो भी सत्य है, वो असत्य नहीं है। तो ये पुरुषोत्तम योग से पहला सिद्धांत हमको ये समझना चाहिए कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। लेकिन है क्या? ये सत्य का प्रतिबिंब है, ये छाया, ये सत्य का, जैसे उदाहरण दिया था, उल्टा वृक्ष कहीं देखने को नहीं मिलता, जिसकी जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो, ऐसा वृक्ष देखने को मिलता नहीं है, तो केवल नदी के किनारे पे मिलता है। तो रात को नदी के किनारे के ऊपर वो वृक्ष दिखाई देगा पानी में, रात को खत्म, और दिन में जैसे सूर्य निकलेगा फिर उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य के अनुसार वृक्ष जो ये है, इसकी जड़ कहाँ है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के दिन में ये वृक्ष दिखता है, और ब्रह्मा जी की रात होती है तो फिर वृक्ष दिखना बंद हो जाता है। भाई जैसे नदी के किनारे जो वृक्ष होगा वो रात को तो नहीं दिखेगा, तो ब्रह्मा जी जब दिन में जागते हैं तब सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी सोते हैं तो छोटी प्रलय होती है, तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। और ये सृष्टि किसके ऊपर टिकी हुई है? वो पेड़ की जो परछाई पड़ती है, उसको परछाई बोलते हैं, वो सूर्य के रोशनी के कारण उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। तो ये संसार वृक्ष किसके ऊपर आधारित है? इच्छाओं के ऊपर, ये जीवों के इच्छाओं के ऊपर आश्रित है। इच्छाएं जब तक भौतिक रहेंगी तब तक हमारे लिए ये भौतिक जगत रहेगा, भौतिक जगत तो फिर भी रहेगा, लेकिन हमारे लिए भौतिक जगत उस दिन समाप्त हो जाए जिस दिन हमारी इच्छाएं समाप्त हुई। काहे की इच्छाएं? भोग की इच्छाएं। एक बहुत सुंदर बात श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी है पहले इस श्लोक में कि भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है, याद रखना, भक्ति का मूल सिद्धांत, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक जगत से नाता तोड़ना और गोविंद से नाता जोड़ना। भाषा ये है, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट टू द सुप्रीम लॉर्ड। जगत से नाता तोड़ो और जगन्नाथ से नाता जोड़ो, ये भक्ति का मूल सिद्धांत है। अब हमारी समस्या क्या है? हम जगत से नाता तोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन भगवान से नाता जोड़ना चाहते हैं। वो ऐसा ही है जैसा नदी के किनारे पे खड़ी हुई नाव जो बंधी हुई है खूंटे में, उसको खोलो नहीं और सारी रात चप्पू चलाते रहो तो हिलती हुई तो नाव दिखेगी, लेकिन वहां से आगे बढ़ेगी नहीं, उधर ही खड़ी रहेगी। बस ये इस जगत में सबसे बड़ी समस्या है। आते तो बहुत दूर दूर से भाग के वृंदावन में है, वृंदावन भगवान का धाम है, चलो, लेकिन आते ही जाने का पहले सोचते हैं। भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो एक बार आता है यहां से वापस जाता नहीं, और हम तो यहां आते ही जाने के लिए हाँ, कैसे लगता है? तो भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? जगत को क्या करें? इसका और सरल भाषा ये है कि भगवान से प्रेम करो, जगत से व्यवहार करो, दुनिया से व्यवहार करो, भगवान से प्रेम करो। बेटे से बेटे का व्यवहार, भाई से भाई का, पत्नी से पत्नी का, और ग्राहक से ग्राहक का, दुकानदार से दुकानदार का सबसे व्यवहार करो, लेकिन प्रेम स्वयं भगवान से करो। प्रेम पुरुषोत्तम से, व्यवहार जगत से, तो रहोगे सुखी। और प्रेम किया जगत से तो फिर व्यवहार होगा भगवान से, तो भगवान आपसे व्यवहार ही करेंगे। और जगत तो प्रेम का, जगत से प्रेम करो, कुछ जगत देने वाला नहीं है। तो ये भक्ति का मूल सिद्धांत प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है पहले श्लोक के तात्पर्य में। और मायावाद जो सिद्धांत है, जिसमें यह माना जाता है कि भगवान जब इस धरती के ऊपर आते हैं तो उनका शरीर भी हमारी तरह प्रकृति का बना हुआ होता है, और प्रकृति माया है, इसलिए उसको मायावाद कहते हैं। वो कहते हैं इस प्रकृति का, इस वृक्ष का मूल ब्रह्म है, तो वो भी ठीक है। भाई ब्रह्म कहां से आया? भगवत गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, उसका आधार मैं हूं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान श्री गोविंद के श्री विग्रह से निकलने वाला जो तेज है, जैसे सूर्य से जो प्रकाश निकलता है जिसके कारण सूर्य को देख नहीं सकते हो, ऐसे भगवान के स्वरूप से प्रकाश निकलता है, क्योंकि वो भगवान ब्रह्म है और उससे निकलने वाले प्रकाश को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और ये सारा दुनिया ब्रह्म ज्योति के अंदर ही समाई हुई है। उस ब्रह्म ज्योति में जहां कहीं भी भौतिक इच्छा आ जाती है, वहां थोड़ा सा एक बादल बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। तो वो जितना क्लाउड बनता है उतना भौतिक जगत होता है, और क्लाउड सदा के लिए तो नहीं रहता है ना, लेकिन हर साल फिर बनेगा जरूर। तो भौतिक जगत इच्छाओं के आधार के ऊपर टिका हुआ है। और क्योंकि जो कुछ भी चीज यहां है वो भगवान के आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, तो इसका एक बहुत बड़ा अच्छा हमारे लिए आश्वासन ये है कि जिन चीजों से हमें यहां इतना ज्यादा प्रेम है, मोह है, वो तो नकली है। असली तो भगवान के धाम में है, तो नकली से नाता तोड़ के असली से नाता जोड़ने में कौन सी नुकसान की बात है? कोई घाटे का सौदा तो है नहीं कि वहां भी ये सब है तब तो यहां दिख रहा है। हमारे भक्त प्रभुपाद के साथ कुंभ मेला में गए थे 72 में, तो घूमते हुए किसी बाबा ने उसको बुला दिया, योगी ने बोला इधर बैठो, आपको ब्रह्मलीन होना है, हम आपको ब्रह्मलीन होना सिखाते हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा ब्रह्मलीन तो सिखाओ, क्या उधर रसगुल्ला मिलेगा? उसने बोला उधर रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है ब्रह्म में। बोला ब्रह्म रसगुल्ला गुलाब जामुन वहां कहां से आया? बोला फिर तुम्हारा जानो, तुम जानो, तुम्हारा ब्रह्म जाने। हमें तो गोलोक में जाके सुरभि गाय के दूध से बने हुए रसगुल्ले खाने हैं, हमें ऐसे जाके उधर क्या, उधर कुछ भी नहीं है तो उधर जाके क्या करेंगे, पागल है क्या? उधर कुछ भी नहीं है तो उधर जाने की इच्छा क्यों होगी? आगे एक श्लोक के भावात में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जब यहां सुनते हैं कि अमेरिका में इतना सुख है, इतना धन है लोगों के पास, इतना ज्यादा जीने का स्तर ऊंचा है, तो आदमी का मन करता है कि मैं अमेरिका जाऊं। अब देखो आप यहां बैठे हैं, उसमें 2-4-5 लोग हैं जो अमेरिका देखा है, बाकी सबने देखा तो नहीं है ना, फिर भी मन करता है वहां बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, ऐसा मन में आता है ना, अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इतना सुंदर भगवान आके अपने लोक का वर्णन किया है कि इतना सुंदर है, इतना मधुर है, इतना सुखमय है, फिर भी वहां जाने के लिए किसी की इच्छा नहीं है, मूर्ख है कि नहीं है ये लोग? कितना भगवान ने आके अपने धाम के सुंदरता का, मधुरता का, नित्यता का, और वहां कितना वैरायटी है, कितना वहां भिन्न भिन्न प्रकार का नित्य नित्य नया नित्य नूतन रोज नया व्यवहार है, रोज नया हर प्रकार का जो है वो रसास्वादन करने के लिए सामग्री है तो उसको छोड़ के यहाँ पुरानी सब चीजों में घिसी पुटी में मरने के लिए क्यों लोग फंसे हुए हैं अभी तक। इसलिए पहले श्लोक को हम पढ़ेंगे, दोबारा क्या लिखा है, ऊर्ध्व मूल अधशाख अश्वत्थ प्राहु अव्ययम्। ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये कल रहने वाला नहीं है। और किसके लिए कल रहने वाला नहीं है, भक्तों के लिए यहां वापस आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि इस वृक्ष से उसको कोई नाता नहीं है। और जो भौतिकवादी हैं, जिनका इस संसार में भोग में ज्यादा भावना है, उनके लिए ये अविनाशी है, सदा रहने वाला है, उनका निकलना यहां से मुश्किल है। छंदांस यस्य प्रणानी, छंदांस यस्य प्रणानी, जो हरे हरे पत्ते इस वृक्ष के दिखते हैं ना सुंदर, ये वेदों के छंद है। छंदांस यस्य प्रणानी, यस्य वेद स वेद वित्त, जो इसको जानता है वो वेद को जानता है। और इस वेद को जानते को प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेद को जानने का अर्थ है जो इस वृक्ष को काटना जानता है वो वेद को जानता है। जो वेद के पत्तों को देख के खुश होता है, वेद के कर्म कांड के ऋचाओं को करके खुश होता है, वो इस वृक्ष के अंदर ही घूमता रहता है। तो वेद स वेद वित्त का अर्थ क्या है, जो इस प्रतिबिंब रूपी आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब रूपी वृक्ष को जो काटना जानता है वो वेद जानता है, वो वेद वेता है। वेद वेता कौन है, जो इसको काटना जानता है। इस संसार को वृक्ष भी केवल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये काटा जा सकता है। वृक्ष की परिभाषा भी ये है, जिसको काटा जा सके। लेकिन जो पत्तों में उलझ जाते हैं, आप वृक्ष के पत्ते गिन सकते हो, आप गिनने बैठो तो नहीं गिन सकते हो ना। तो वेदों के जो ऐसे छंदों में अटक गए वो इसी वृक्ष में ऊपर नीचे घूमते रहेंगे, वो इस जगत से छूट नहीं सकते। और ये वैदिक की ऋचाएं हैं जिसने इस जगत को इतना सुंदर बनाया है, नहीं तो ये जगत, वैसे छंदांश का अर्थ होता है कपड़ा ढकना, ओढ़ना, छंद को ओढ़ना बोलते हैं। तो इस वृक्ष का ओढ़ना वेद के छंद है, वो नहीं हो तो ये वृक्ष बिल्कुल भूत जैसा लगेगा। तो संसार के अंदर जो लुभानी सब चीजें वेदों में वर्णित है, जिसको भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ये पुष्पितम क्या है वाक्यम, ये जो वेदों के बहुत लुभावने वाक्य हैं कि तुम स्वर्ग में जाके अप्सराओं का भोग करोगे, कितना आनंद है उधर नंदन कानन में जाके घूमोगे, वहां जाओ और जाके देखो, बड़ा सुंदर है, लेकिन तुम्हारा टिकट खत्म होगा तब वहां से फिर धक्का देके नीचे भेज दिया जाएगा। तो फिर वहां क्या सुख है जहां से वापस भगा दिया जाए। तो इसलिए जो इस वेद के छंदों में इन पत्तों को देखते हैं, वो कभी ऊपर का पत्ते में जाते हैं, कभी नीचे के पत्ते के ऊपर आते हैं, वो ऐसे डालियों के ऊपर घूमते हैं, कभी स्वर्ग लोक में जाते हैं, कभी नीचे के लोकों में आ जाते हैं। अब दूसरा श्लोक क्या है, नर अस्य नर नस्य तत्व उपलब्ध्यते नान्तोन चादर नच संप्रतिष्ठा अश्वत्थमायनम स्वरूढ़ मूलम असंग शस्त्रे न। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, अधश्चोर्ध्वं प्रतिष्ठास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विश्य प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। ये मनुष्य लोक के लिए बात हो रही है, जिसको कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार और किसी जूनी में नहीं है। कर्म जूनी मनुष्य की है और कर्म क्षेत्र ये भूलोक है जी, कर्म योनि नहीं है, देव योनि भोग योनि है, सुख भोगने की योनि है। यज्ञ आदि करते हैं देवता लोग, यज्ञ करते होंगे भगवान के लिए, लेकिन वो उससे कोई उनको ऊपर उठने नीचे उठने नहीं, वो उनका कर्तव्य कर्म है इसलिए करते हैं। वैसे कर्म, ये कर्म क्षेत्र इसी को कहा है, कर्म क्षेत्र ये भूलोक है। ऊपर के लोगों में भगवान की उपासना करते हैं और कभी भूल भी जाते हैं भोग के कारण, उधर इतने सुख हैं कि भगवान कभी कभी याद आता है, और नरक में इतने दुख है कि भगवान याद आता नहीं है। इस दुनिया में थोड़े दुख हैं थोड़े सुख हैं, तो इसलिए भगवान प्राय याद आता ही रहता है। यहाँ थोड़ा संभावना ज्यादा है भगवान को याद करने की स्वर्ग के। और जैसे नारद जी कहते हैं, धनी आदमी को भगवान का प्रचार करना बहुत मुश्किल है, उसको भगवान का नहीं धन का सहारा होता है, लेकिन गरीब को प्रचार करना आसान है, क्योंकि उसको धन तो है नहीं, पहले ही दुखी है, तो उसको थोड़ी सी जो भी आसक्ति है भगवान में अगर लगा दी जाएगी तो वो आसानी से भगवान की तरफ मुड़ सकता है, ये नारद जी का कहना है। नारद जी कहते हैं, वैसे अंध आदमी को जो नशा चढ़ाता है, वो चार चीजें आदमी को नशा चढ़ाती हैं। एक तो सुंदर रूप हो तो समझता है कि मेरे जैसा कोई और है नहीं, और दूसरा उच्च कुल में जन्म हो, हाई बर्थ ब्यूटीफुल फिगर, बहुत सुंदर सूरत, उच्च कुल में जन्म, उच्च विद्या, पढ़ा हुआ ज्ञानी हो, तीन ये नशा है, और चौथा धन का नशा है। फिर नारद कहते हैं, इन चारों में से धन मद अंध, धन का नशा सबसे बड़ा खतरनाक है, वो नशा उतरता नहीं है जब तक लात नहीं लगती है दौलत की, तब तक वो नशा उतरता नहीं है, धन का नशा बहुत खतरनाक है। तो यहां ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अधश्च मूलानि अधश्च ऊर्ध्वम् प्रतिष्ठास्तस्य शाखा, इस वृक्ष की शाखाएं कुछ ऊपर जाती हैं और कुछ नीचे जाती हैं। ऊपर कौन सी शाखाएं जाती हैं? स्वर्ग आदि लोगों में रहने वालों के लिए ऊपर की शाखाएं हैं, देवलोक है, गंधर्व लोक है, किन्नर लोक है, सत्य लोक है, तप लोक है, जन लोक है। और नीचे कौन सी शाखाएं हैं? ये मानव, इसके नीचे नीचे के लोक हैं, ये सब भौतिक जगत के छह लोक नीचे आए, अताल पताल सूतल तलातल, ये ऊपर और नीचे की शाखाएं इसकी बंटी हुई है, और सब शाखाओं के ऊपर बहुत सारे जीव रह रहे हैं। गुण प्रवर्धा, पानी कौन देता है इस वृक्ष को, ये शाखाएं कैसे बढ़ती हैं? तीन प्रकृति के गुणों के द्वारा इस वृक्ष का सिंचन होता है, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा इस वृक्ष का सिंचन होता है। इसका अर्थ क्या है? आपको अगर इस वृक्ष को सुखाना है तो क्या करोगे? पानी देना बंद कर दो। इसका मतलब तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को निकाल लो, आप तीनों गुणों से अपने आप को उठा लो, ये वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। आपके लिए ये वृक्ष सूख जाए उसके लिए साधन क्या है? वृक्ष को जल देना बंद करो। इसका मतलब तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करो। और यही दो बार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहा, निस्त्रगुणो भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर आओ। वेद तीनों गुणों की बात करते हैं, त्रिया वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन, वेद में तो तीन स्वर्ग आदि लोक के वर्णन का इसका वर्णन है, और तीनों गुणों के अंतर्गत सारी शिक्षा वेद की है, और तुम इनसे ऊपर आओ तीनों गुणों से। लेकिन अर्जुन दूसरे अध्याय में इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। चौदहवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे हूं भगवान, तब पूछा अर्जुन ने, तब भगवान ने फिर कहा, एक ही रास्ता है तीनों गुणों से ऊपर आने का, और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान सतोगुण में होता है, सतो संजायते ज्ञानम, वो ज्ञान जो हमारे पास है वो तो सतोगुण का है, सतोगुण के ज्ञान से भगवान नहीं समझ में आएगा। भगवान तो तीनों गुणों से ऊपर है, भगवान निर्गुण है ना, भगवान तो निर्गुण है, तीनों गुणों से ऊपर है, प्रकृति के गुणों से भगवान ऊपर है। तो भगवान को समझने के लिए अथवा भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हमको तीनों गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। तो कौन सा साधन भगवान ने तीनों गुणों से मुक्त होने का बताया भगवद गीता में? माम च यो अविवेचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मेरी अविविचारी भक्ति, अनन्य भक्ति आपको तीनों गुणों से ऊपर ले जाएगी। तीन गुण किसके हैं? प्रकृति के। और ये प्रकृति क्या है? भगवान की बाहर अंग शक्ति। बगैर शक्ति के आप चल सकते हो? शक्ति नहीं होगी तो चलोगे? तो आपको शक्ति तो कोई हो चाहिए ना चलाने के लिए। अभी हमको बाहर अंग शक्ति चला रही है। जब तीनों गुणों से ऊपर आएंगे तो कौन चलाएगा हमको? दैवी। कौन चलाएगा? महात्मा नस्तुमाम पारथ देवीम प्रकृतिमाश्रिता। मेरे महात्मा मेरी देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। फिर उनका पोषण कौन करेगा? वो जल कौन सा उधर उनका पोषण कैसे होगा? अहलादिनी शक्ति कराए करे भक्तेर पोषण। जो भगवान की अहलादिनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए है, वो भक्तों का पोषण करती है। जब भक्त भौतिक प्रकृति के गुणों से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं तो वो सीधे कहाँ जाते हैं? भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने शास्त्र में साफ लिखा है, भगवान, भक्त और भक्ति तीनों भौतिक प्रकृति से बाहर हैं, तीनों भगवान की अंतरंग शक्ति के भक्तों की अंतरंग शक्ति पोषण करती है। भक्ति अंतरंग शक्ति की शक्ति है और भगवान को आनंद देती है अंतरंग शक्ति। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम कभी बोलते हैं भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति आया है। आया समझते हो? बच्चे को पालन करने पोषण करने के लिए घर में रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दाया बाया जो भी बोलो आप, वही माया है। और एक बच्चे की माँ होती है और एक बच्चे को पालन पोषण करने वाले के लिए घर में रखते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैड। और वो जिसको पालती है वो भी हो जाता है मैड। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रकृति है हमारी मैड, ये हमारी मैड है और हमको मैड बना देती है। और राधा रानी जो अंतरंग शक्ति भगवान ही की है, जिसको हरे कृष्ण मंत्र में हम संबोधन करते हैं, राधा है जगतेर माता, ये साफ लिखा है, राधा है जगतेर माता, राधा जगत की माता है। और ये प्रकृति है आया माया। अब बच्चे को जब नहीं उठाना होता है ना घर में काम करने वाले को, तब तो उसको चुंटी मारती है, अपने आप बच्चा रोता है तो माँ उसको लेती है। वो कोई प्रेम नहीं करती है, उसका तनख्वाह बंद कर दो, वो बच्चे को पालन करेगी क्या? हाँ नहीं करेगी ना। तो ये जगत, इस जगत का दूसरा नाम कैसा है? स्त्रियां शादी हो जाती है तो अपने माता पिता के घर को क्या बोलती हैं? हाँ मई का, उसको थोड़ा सा मई के ऊ को तो लंबा करके माया कर दो, फिर क्या हो जाएगा? माया का। तो जो शादीशुद्ध स्त्री है, विवाहित है, वो कितने दिन अपने माता पिता के घर में रह सकती है? सदा सुखी रह सकती है? हाँ जी नहीं रह सकती है। लेकिन जब वहां जाती है तो कितनी खुश होती है, कुछ करने को नहीं है, सर के ऊपर कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, कोई काम के लिए कहने वाला नहीं है, जो चाबी चाहिए वो उठा सकती हूं, है ना कि नहीं है? बड़ी खुश होती है वहां, लेकिन रह नहीं सकती वहां। तो ये संसार आपका भी भाइयों और आपका भी माताओं मई का है, यहां घूम लो लेकिन रह नहीं सकते। पति के घर जाना पड़ेगा, वो जगन्नाथ पति है, जगतपति है, उसका नाम ही पति है, जगतपति प्रजापति जगतपति। उधर जाने से केवल सुख मिलेगा, मईके में लड्डू खा लो जितने खाने हैं। और ये लड्डू कैसे हैं, कानपुर में लिखा है एक दुकान के ऊपर, ठग्गू के लड्डू, जो खाए वो भी पछता है, जो न खाए वो भी पछता है। उसने नीचे और क्या लिखा है, कोई नहीं है हमारा सग्गा जिसको हमने नहीं है ठग्गा, उस दुकान के ऊपर लिखा है कानपुर में। किसी को मालूम है कानपुर की दुकान है ना, ठग्गू के लड्डू, कोई नहीं है हमारा सग्गा जिसको हमने नहीं है ठगा, जो खाए वो भी पछता है, न खाए वो भी पछता है। ये इस दुनिया का स्लोगन इसके ऊपर लिखा हुआ, किसी को नहीं ठगा, ये ऐसी दुनिया है, ऐसा कोई नहीं है जिसको इसने नहीं ठगा है, चाहे भले कितना भी इसका सग्गा हो जाए। तो इस दुनिया रूपी वृक्ष के शाखाओं को बढ़ने के लिए पानी क्या है, इसका तीन गुण। इसलिए तीन गुणों से अपने आप को ऊपर लाने के लिए साधन करना चाहिए। पहले कम से कम तमो और रजो गुण से ऊपर उठ के सतो गुण में स्थित होना चाहिए। सतो गुण ब्राह्मण की जैसे लक्षण आने चाहिए, गुण आने चाहिए। और उस ब्राह्मणों के गुणों में एक है कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो सत्वगुण में आने के बाद ऊपर शुद्ध सत्वगुण में जाना चाहिए। तो ये वृक्ष को काटने का एक सरल तरीका क्या है, तीनों गुणों से इसका पानी बंद कर दो तो ये बढ़ेगा नहीं। एक बात तो हुई ये, अब पानी जब इसको दोगे बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, विषय प्रवाला, जो इसकी विषय का मतलब क्या है, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय, आंख के लिए सुंदर रूप, कान के लिए शब्द, ये इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। इस वृक्ष के जो नए नए ताजे ताजे पत्ते निकलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रवालाहा, बड़े कोमल होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं पत्ते वो। तो जो इंद्रियों के विषय हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, और जो जो डाली का अंत का हिस्सा है वो बड कहते हैं, बड उसको, वो इंद्रियां हैं, और ये पत्ते जो हैं ये प्रवाला हैं, ये बड़े बड़े, ये कोमल कोमल नए नए ताजे ताजे पत्ते हैं, और इसको भोगने का मन करता है, बड़े सुंदर लगते हैं। विषय प्रवाला हा, इंद्रियों के विषय इस संसार के बंधन के लिए सबको आकर्षित करती हैं। जब बांके बिहारी दर्शन करने कभी हमारे तो जाना बहुत कम होता है, लेकिन कभी अचानक जाएं भी ना, जब आप बांके बिहारी जाते सीधे से गली से ऊपर टर्न करोगे ना, तो कोने के ऊपर का आलू टिक्की वाला बैठा है, वो जब आप वहां से मुड़ोगे ना, उस वक्त थोड़ा घी डाल के और करेगा, और शू पूरा आपके नाक में आएगा, बांके बिहारी भूल जाएगा, खड़े होकर टिक्कियां खाना शुरू करेगा। ये उसका ये विषय प्रवाला है, जाते ही वो जब, वैसे कुछ नहीं करेगा, आपको जाते देखा नहीं, उसने घी कड़ाही पे डाला नहीं और छंटा पानी का ऐसे क्रक, तो जो उसके अंदर से बहुत सुंदर सुगंध आपके नाक में गई ना, तो उस विषय ने आपको ऐसा पकड़ लिया, बांके बिहारी कहां जाएगा, यही है देख लेते हैं, टिकिया को खा लेने दो। मंदिर में लोग कम दर्शन के लिए खड़े होते हैं, टिकिया वाले के पास ज्यादा आराम से बैठते हैं, देखा है, हाँ। विषय प्रवाला हा। एक बार किसी ने भगवान से कहा कि आप दर्शन दे दिए, बहुत ये भक्त बड़े आपके याद में दुखी हो रहे हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, बोला कब करना चाहते हैं, अभी दे दे तो सबसे अच्छा है। ठीक है, आज शाम को 5 बजे आप बलराम हाल में, आपको भगवान ने कहा कि दर्शन देंगे। अब ये अनाउंसमेंट भी सुबह मंगल आरती में हो गई कि बलराम हाल में भगवान के दर्शन होंगे। उस दिन दर्शन से पहले, जैसे मंदिर के अंदर आने का रास्ता है ना, वहां बाहर जहां अपना ये गोविंदा बेकरी है, वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, आज आइए सब कुछ खाइए, किससे कुछ नहीं लिया जाएगा। अब बलराम हाल 5 बजे 4:30 बजे घर से निकले, आए उधर पहुंचे दर्शन के लिए तो 4:40 हुआ। अरे पिज्जा मुफ्त का दे रहा है, रसमलाई मुफ्त की, आज तो पैसा नहीं लेंगे। उधर लाइन में ऐसी भीड़ लग गई, 10 मिनट के बाद कुछ खाने को मिला, मुफ्त का था ना। थोड़ा उरली तरफ आया तो गिफ्ट शॉप वाला बोला, आज ये सारे पुस्तक जो फोटो है मुफ्त के ले जाओ। सब वहां खड़े हो गए, 5 से 5 मिनट भी नहीं बचा। उस दरवाजे से आने लगे, इतनी भीड़ हो गई कि एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, क्योंकि बाद में देर हो गई। और यहां आते आते 5:05 हो गया, दरवाजा बंद हो गया। तो भगवान के बुलाए भी ना भगवान, तो बीच में कोई खाने का मुफ्त का मिल गया, कोई देखने का मुफ्त का मिल गया, कोई गाने का मुफ्त का मिल गया, तो उसको पकड़ लेंगे, भगवान के पास जाने वाले हम नहीं। भगवान कहाँ जाएगा हमें, वो तो नित्य है। ये जो थोड़ा वो एक संस्कृत में एक कविता है, भुंक्ष्व दुर्बुद्धे मूरख दबा के खाओ, भुंक्ष्व दुर्बुद्धे पर अनम दुर्लभम, पराया माल मुफ्त का मिलना मुश्किल है, खाओ खाओ खाओ। भुंक्ष्व दुर्बुद्धे पर अनम दुर्लभम, शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाएगा, पराया माल थोड़ी बार बार मिलेगा। मूर्ख जितना जी भर के खा ले, ये शरीर तो कभी भाई कई बार मिलता है, पर है माल थोड़ी रोज रोज मिलेगा। तो भगवान तो यही मंदिर है, कहां जाएगा, पहले बाहर का माल खाना है, वो तो खा लो। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसा बहुत सुंदर होटल था, उसके बाहर लिखा था, आइए खाइए, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, आपका बिल आपके पोतों से वसूल किया जाएगा। ये ब्रह्मचारी लाल कपड़े वाले बोला, हम ना शादी करेंगे, कहां के पोते जरो जमाल खाते हैं। सब टूट पड़े अंदर। जब पेट भर के खा के बाहर निकले तो उसने बोला, 1200 रुपया लो। उसने बोला, आपने लिखा है कि हमारा बिल हमारे पोतों से लोगे। बोला, ये तुम्हारे दादा का बिल है, वो तो दे के जा। तो इस संसार में हम सब दादा का बिल भोग रहे हैं, जो पहले करके आए इसलिए ये बिल भोग रहे हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत से लोग कहते हैं अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, इस जन्म में हम तो बड़े ईमानदार हैं, वो दादा का बिल पे कर रहे हैं। पहले खाया है वो पे कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक की तीसरी लाइन में है, अधस्य मूलानि अनुसंततानि, इसकी कुछ जड़ें नीचे भी हैं, असली जड़ तो बड़ी ऊपर है, लेकिन कुछ जड़ें इसकी नीचे भी है। ये नीचे वाली जड़ें कौन सी है? प्रभुपाद जी ने लिखा है, नीचे वाली जड़ें हैं राग द्वेष। जड़ का मतलब होता है जो बांधे इस दुनिया में। इस दुनिया में हमारे को क्या बांधता है? राग और द्वेष। जो चीजें हमें अच्छी लगती है उससे राग हो जाता है, जो चीजें हमें बुरी लगती है उनसे हमें द्वेष हो जाता है। और ये जड़े हैं और ये चारों ओर से नीचे ऐसी उलझी हुई हैं इस संसार में कि इनसे, इन जड़ों से अपने आप को छुड़वाना बहुत मुश्किल है। सो नीचे भी मूल है। हाँ, नीचे जो मूल है, अधस्य मूलानी अनुसंततानी, नीचे चारों ओर ये राग द्वेष की जड़ें ऐसी फैली हुई हैं और उसके कारण आदमी क्या करता है? कर्मानु बंधीनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में आदमी फिर कर्मों से बंधा हुआ है। लोग, हम जब उसको कहते हैं भगवत गीता सुनो, बोला क्या है भगवत गीता में? कर्म है ना, हम कर ही रहे हैं। तो कर्म अगर तुम करोगे तो इस संसार वृक्ष में बंदर की तरह ऊपर नीचे कूदते रहे हुए, तुम्हारे को यहां से छूटने का रास्ता नहीं मिलेगा कर्म से। कर्म की परिभाषा क्या है गीता में? कर्म योग तो दूसरी बात है, कर्म की परिभाषा क्या है? किम कर्म उच्यते, आठवें अध्याय में अर्जुन पूछता है किम कर्म उच्यते, कर्म किसको कहते हैं? और भगवान कहते हैं भूत भाव उद्भव कर्व, भूत भाव उद्भव कर कर्म संज्ञते। कर्म की संज्ञा वो है जो आपको शरीर लेने के ऊपर बाध्य करे। कर्म करोगे तो उसके फल लोग करने के लिए, भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा। कर्म का मतलब अपने नए शरीर की तैयारी करनी। इसलिए भगवत गीता कहती है अकर्मी बनो, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाओ। उसके होने का क्या रास्ता है? अकर्मी का मतलब है कर्म के फल से आसक्ति हटा दो, कर्म के फल में आसक्ति मत रखो, कर्म के फल में लेकिन आप तो दुनिया काम कैसे करेगी? आप कहोगे आइए हमारे पास नौकरी कीजिए, आपके लिए बहुत जगहें खाली है, लेकिन तनख्वाह नहीं देंगे, कोई आएगा? हाँ, तो क्या भगवान ऐसी कोई फिलॉसफी बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है? हाँ, ये कौन सा विशेष श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय में जो सब कर्मणाम एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको कर्म करने का अधिकार है, फल फल क्या लिखा है? फल न फलेषु, क्योंकि जो फल होते हैं ना उसके पीछे क्या लगा हुआ है? इशु, फले इशु, इशु कहते हैं संस्कृत में बाण को, जो तीर होता है ना उसको, बाण को इशु बोलते हैं। इशु भी ही प्रत्युतस्यामि, अर्जुन कहता है मैं कैसे तीर मारूंगा भीष्म ओर। तो अगर फल को पकड़ने का प्रयास करोगे तो बहुत सारे बाण लगेंगे, तीर लगेंगे, बड़ा कठिन दर्द होगा। फलों के साथ इशु जुड़ा हुआ है, तीर जुड़ा हुआ है। तो क्या भगवान तो कोई काम करेगा बगैर फल के? बताइए जरा, कोई बगैर फल के काम करेगा क्या? हाँ, कभी लोग ऐसे एक एक दृश्य कहते हैं भाई ये सूर्य काम कर रहा है, कभी आपसे फल मांगा कि मैं आपको रोज रोशनी दे रहा हूं, कभी आपसे फल मांगा? ये हवा चल रही है, मुफ्त में सांस ले रहे हो, कभी आपको कहा कि हमको पैसा दो, हमको फल दो, कभी मांगा इसने? नदियां बह रही है, पानी पी रहे हो, कभी कहा कि पैसा दो? नहीं मांग, कोई कोई मांग रहा है आपसे? तो आप सब मुफ्त का खा रहे हो, लेकिन आपसे कोई काम मांगते हैं तो कैसे पैसा चाहिए? सब कुछ मुफ्त का मिल रहा है आपको। एक तो दृष्टिकोण ये है, इसको व्यापक दृष्टि कहते हैं, लेकिन एक हमारा इसका जो समझने का सिद्धांत है वो ऐसे है, आप लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं तो मास्टर जी आपको कहते हैं आपको एग्जाम देने का अधिकार है, यू हैव राइट टू अपियर इन द एग्जाम एंड यू हैव नो राइट टू गिव रिजल्ट यूर सेल्फ। ये गलत है, सही है? आपको एग्जाम देने का अधिकार है, परीक्षा दे सकते हो लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये सही है गलत है स्टेटमेंट टीचर का? अगर प्रोफेसर कहे कि आपको एग्जाम देने का अधिकार है, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, गलत है सही है? रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन तुम नहीं दे सकते हो रिजल्ट, कोई और देगा। इसका अर्थ यह है, ये कोई कवि ने कहा है कि मनख मजूरी देत है क्यों राखेगा राम, जब दुनिया ही दुनिया में काम करने का आपको कुछ न कुछ वेतन देता है तो भगवान के लिए काम करोगे तो भगवान आपका राखेगा थोड़ी। लेकिन वो आपको क्या देगा? जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है, आपके भौतिक बंधन से छुड़ाने वाला है, वो देगा फल। कहते हैं भगवान से भी मांगो और देवता से भी मांगो, दोनों में अंतर क्या है? देवता का अर्थ क्या है? देने वाला। देवता कहते ही उसको जो देता है। देवता से मांगो और भगवान से मांगो, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, देवता से जो मांगोगे वो दे देगा और भगवान वही देगा जिसमें मांगने वाले का कल्याण हो। जो देवता देगा वो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा, भगवान देगा वो शाश्वत होगा। देवता लिमिट में दे सकते हैं, देवता, भगवान अनलिमिटेड दे सकता है। भगवान जो देवता देंगे भगवान से लेकर देंगे। और भगवान भी देते हैं लेकिन देते देते आपकी जो लेने की इच्छा है उसको पवित्र कर देते हैं, और जब देने का समय आता है भगवान के तब हमारी लेने की इच्छा नहीं होती है, बोलते हमें जरूरत नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ डिजायर कृष्ण प्यूरिफाई द डिजायर। ध्रुव महाराज गया तो पिता से बड़े राज के लिए था, लेकिन जब भगवान ने कहा राज चाहिए, बोला हमें नहीं चाहिए आप मिलने के, आपको देखकर उसके बाद राज की इच्छा करना, ये तो हीरो को छोड़ के कांच के टुकड़ों को ढूंढना है, ये मूर्खता है। तो भगवान देता है लेकिन देने से पहले भोग की इच्छा को पवित्र कर देता है। और ध्रुव को लोक भी दिया और अभी भी शाश्वत पड़ा है, तो भगवान नहीं देता है ये तो नहीं है, लेकिन वो क्या देता है आपके विचार से बहुत बड़ा है, इसलिए आप अपनी छोटी बुद्धि से कुछ मांग के मूर्ख मत बनो। आप भगवान को कहो जो हमारे लिए अच्छा है, जिसमें हम आपकी सेवा कर सके वो ही आप दीजिए। अपनी इच्छा से कुछ मांग के मूर्खता कर लोगे तो फिर जो भगवान को देना होगा वो कम हो जाएगा। तो कर्म का क्या परिभाषा है? जो हमको दोबारा शरीर लेने के लिए बाध्य कर ले। इसलिए ये कर्म के संसार में, कर्म क्या है प्रभुपाद ने कहा, पांच विषय भगवत गीता के हैं, उसमें एक कर्म ही है जो आपके हाथ में, जिसको आपको बदलना है। आपको अभी अपने कर्म को बदलना है। इसको किस में परिवर्तित करना है? अकर्म में। अकर्म, अकर्म का मतलब भक्ति संबंधी कर्म, जिस कर्म के करते हुए भी उसके फल का बंधन न पड़े। कर्म तो होगा लेकिन फल, उसके फल का बंधन नहीं पड़ेगा। भगवान, उसके फल क्या है उसका? कोई पूछे कि उस कर्म का फल क्या है? उसका फल है भगवान मिलना। अब बताइए, आपके कर्म का एक तरफ फल है आपको मंत्री पद मिल रहा है, और दूसरे तरफ फल का, कर्म का फल है भगवान मिल रहा है, दूसरे दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? लेकिन दुनिया वाले सब इस संसार के सुख लेने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में अकर्म का फल भगवान का प्रेम और भगवान की प्राप्ति है। ऐसे नहीं है कि अकर्म का कोई फल नहीं है। अकर्मी का जो फल है वो तो भगवान है, वो तो उसको भगवान मिलता है। तो जो भगवान को छोड़ के संसार के कहां, एक देवी के नवरात्र में हमको मॉरिशस में एक सत्संग के लिए बुलाया, तो हम गए, हमने कहा दुर्गा देवी भगवान की शक्ति है, इस संसार की सारा संचालन उसके हाथ में है, और इस संसार को जेल खाना कहते हैं, और उसकी जेल की वो सुपरिटेंडेंट है। हाँ, इस संसार की मालिक तो दुर्गा है, इसलिए हम साल में दो बार नवरात्र रखते हैं, पूजा करते हैं। हमने बोला बहुत अच्छा करते हैं, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। हमने कहा प्रश्न ये है कि अगर आप जेल में हो और जेल सुपरिटेंडेंट की आप सेवा करो और वो आपको कहे कि क्या मांगो क्या चाहिए, तो आप उसको कहोगे कि हमें एसी लगा दो हमारे कमरे में, हमारे पास टेलीफोन लगा दो, हमारे पास प्रसाद हमारे घर से आना चाहिए, भोजन, ये मांगना ठीक है, या जेल सुपरिटेंडेंट को कहो कि हमको जेल से निकाल दो ये ठीक है? हाँ, जब उसी की पूजा करनी है तो उसको क्या कहना चाहिए कि हमको जेल से निकाल दो। हमने बोला आप क्या करने आते हो? बोला हम तो ये करने आते हैं कि हमारे घर में सुख संपत्ति हो, तो लगाओ ऐसी घर में, जेल में ही सुख मांग रहे हो ना, तो इसमें कौन सी बुद्धिमानी का तुम्हारी मांगना है, तुम्हें मांगना भी तो नहीं आता ना भाई। यहां वृंदावन में गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा करी, गोपेश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन मांगते क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण प्रेम को। तो जाओ तो मांगो, यहां से मुक्त होने के लिए बोला मां इस जेल से हमको निकलने का रास्ता बताओ, आपकी पूजा किया यहां से हमके निकालो। तो ये निकालने वाला तो कोई झमेला कोई मांगता ही नहीं है, सारे ही अंदर सुख मांगने का प्रयास कर रहे। तो कर्म का मतलब है संसार के अंदर वापस आने का तैयारी, इसलिए ये संसार कर्मों का खेत है, ये संसार कर्मों का खेत है, जिसमें हम कर्म का फल वो डालते हैं और फिर हमको वो भोगना पड़ता है, जैसा डालेंगे वैसे भोगना पड़ेगा। इस श्लोक के भावार्थ में यह श्लोक दूसरा हो गया। इस श्लोक से हमने आज क्या सीखा कि ये जो नीचे वाली जड़ें हैं ना, राग द्वेष, ये बहुत खतरनाक है, इसने हमको चारों ओर से जकड़ के रखा है। तो क्या राग द्वेष खत्म हो जाएगा? राग द्वेष खत्म किया जा सकता है क्या? नहीं खत्म होगा। तो इसके लिए एक शब्द भगवत गीता में भगवान ने कहा है, तीसरे अध्याय में, राग द्वेष विवस्थितो परिपंथिनो। अगर इसको व्यवस्थित नहीं करोगे तो तुम्हारे रास्ते के ये रुकावटें हैं। तो राग द्वेष को व्यवस्थित करने का अर्थ क्या है? देखो, आपके घर में माताओं, आपका घर है, आपके घर में कुछ चीजें हैं जो किचन में होनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जो टॉयलेट में होनी चाहिए। तो व्यवस्थित कर, बाजार से जब माल आता है तो आप व्यवस्थित करते हैं ना कि साबुन है, पेस्ट है, बाथरूम क्लीनर है, ये सब कहां रखोगे? किचन में रखोगे? हाँ, यहां से प्रसाद मिलेगा उसको किचन में जाके खाएंगे कि ये बाथरूम में जाके खाएंगे? व्यवस्थित का अर्थ है कि जो चीज जहां की है वहां रखो। सब्लिमेशन व्यवस्थित का मतलब घर में हर एक चीज व्यवस्थित करके रखो भाई, कपड़ा जहां है वहां कपड़ा रखो, जहां भोजन है वहां भोजन रखो, जहां टॉयलेट का टॉयलेट। तो राग को व्यवस्थित कैसे करेंगे? भगवान से राग करो। आपको राग का मतलब है आसक्ति, आसक्ति भगवान की कथा में करो, भगवान के भक्तों से करो, भगवान के नाम में करो, भगवान के दर्शन में करो, तो ये आसक्ति होगी। आपका राग कहां चला गया? भगवान की तरफ चला गया। और द्वेष करना है तो किससे करो? चार चीजें बुरी छोड़ दो, ये द्वेष है, इन चीजों से द्वेष करो। हमें नशा नहीं करना है, नशे से द्वेष करो, पशु हत्या से द्वेष करो, व्यभिचार से द्वेष करो, तो व्यवस्थित हो गए ना दोनों, तो खराब तो नहीं हुए, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए ना। तो फिर ये जड़ें जो है ये अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी, आपकी जान छोड़ देंगी। व्यवस्थित करने का मतलब है, हम तो वैसे भी भक्ति हमारी आगे चल के हमको करनी तो राग भक्ति है, तो भक्ति में राग बहुत जरूरी है। राग का मतलब है भगवान से बहुत बड़ा ऐसा स्नेह होना चाहिए जो नित्य निरंतर रहे। जैसे बच्चे से जो आपका प्रेम है, रात को आप सो जाते हो, कम होता है क्या? उतना ही होता है जितना पहले है। बच्चा सामने है या नहीं है तो भी उसके प्रेम में कोई कमी तो नहीं आती है। ऐसे भगवान से प्रेम हो के किसी स्थिति में उसमें कमी नहीं आए, तो ये राग हो गया भगवान से। और द्वेष उन चीजों से करो जो भगवान की भक्ति में बाधा है, जो भक्त की भगवान की भक्ति में रुकावट डालती है, उन चीजों से द्वेष करो। तो राग द्वेष को व्यवस्थित करो तो ये दोनों जड़ें अपने आप सूख जाएंगी। ये जड़ें फिर सूख जाएंगी, इस जड़ों से कुछ बढ़ने वाला नहीं है फिर, क्योंकि ये तभी बढ़ती हैं जब हम इनके इसको संसार से राग करते हैं और द्वेष करते हैं संसारी जीवों से। तो ये दूसरे श्लोक का तात्पर्य है। और तीसरे श्लोक में भगवान इस वृक्ष के विषय में थोड़ा और बताते हैं। भगवान कहते हैं न रूपम अस्य ततो उपलभ्यते, इस वृक्ष का रूप इस संसार में देखा नहीं जा सकता। इस संसार का कैसा रूप है ये यहां दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे तो हमको बड़ा डर लगेगा, बहुत भयानक रूप है इस संसार का। अच्छा है कि इसके ऊपर पत्ते चढ़े हुए हैं, इसलिए कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। इसका रूप देखने जैसा है ही नहीं, संसार का बड़ा भयानक रूप है। न रूपम अस्य ततो उपलभ्यते, ना तो न चादर न च संप्रतिष्ठा, इसका आदि कहां से है यह भी पता नहीं है, और किसके ऊपर आश्रित है यह भी पता नहीं है इस रूप का। अब कहां जाके ढूंढने गया, आप में से कोई जाएगा क्या ब्रह्मलोक में इसकी जाके जड़ को ढूंढ के आए? हाँ, कैसे पता लगेगा इसका? नहीं पता लगेगा। कहां से शुरू हो रहा है? ब्रह्मा जी स्वयं को यह पता नहीं लगा कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं। वो तो एक ही कमल की डांडी के अंदर बाहर ऊपर चल चल के थक गया। जब ब्रह्मा जी को अपने उद्गम स्थान को ढूंढने में उम्र लग गई और कुछ नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी के संसार वाले कब ढूंढ पाएंगे कि कहां से ये शुरू हुआ है? तब ब्रह्मा जी ने कैसे ढूंढा उसको? तपस्या की, तब भगवान ने कृपा की। जब हम तपस्या करेंगे तो भगवान की कृपा को हम आकर्षित करेंगे, भगवान की करुणा शक्ति को, अनुग्रह शक्ति को। देखिए कितने यहां जितने लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोग हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं या उनसे मिले हैं, या आप जाओगे तो आपको नाम से बुला लेगा? इस दुनिया के अंदर एक देश के प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना और जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई आप ऐसा अच्छा काम कर लो देश के लिए, तो आपको प्राइम मिनिस्टर बुला के वहां पुरस्कार देता है कि नहीं देता है? तो अगर हमको असल में इतनी तपस्या करनी चाहिए कि भगवान की कृपा से भगवान ही कहे कि इतना कौन है तपस्या करने वाला मेरे लिए, मुझे ढूंढ रहा है, तो फिर भगवान की करुणा को हम आकर्षित कर पाएंगे। कब? माँ यशोदा अगर प्रयास बांधने का नहीं करती कन्हैया को, तो कन्हैया की करुणा शक्ति प्रकट नहीं होती, तो कन्हैया बंधन में नहीं आता। भक्त को अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए। दूसरा छोटा सा उदाहरण भगवद गीता में चिड़िया का दिया है, जिसके अंडे समुद्र ले गया था। चिड़िया ने कहा मैं तेरे को चूंच का पानी उठा के सुखा दूंगी, मेरे अंडे वापस दो। अब चिड़िया कभी समुद्र को सुखा सके ये संभव नहीं है, लेकिन उसने कहा जब तक मेरे में जान है मैं तो ये काम करूंगी। तो भक्ति भी इतना आसान नहीं है, लेकिन उस चिड़िया की तरह हम कहेंगे हमें तो भक्ति करनी ही है, तो फिर भगवान का कोई गरुड़ जैसा भक्त आएगा तो हमारे के उस जो हमारा इच्छा है भगवान की कृपा को आकर्षण करेगा, तो फिर हम आरा लिए जो असंभव है वो संभव हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इसका न आद है न अंत है, इसको ढूंढेंगे तो ये मिलेगा नहीं। अश्वत्थमायनम स्विरूढ़ मूलम, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ना, इसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं और ये निकलना बहुत मुश्किल है। स्विरूढ़ मूलम, बड़ी आरूढ़ है, अंदर बहुत गहरी है, निकाली नहीं जा सकती। तो फिर क्या करूं? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, असंगता का शस्त्र हाथ में उठाओ और इसको एक झटके से काट दो। बस इसका एक ही रास्ता है, अश्व वृक्ष की जड़ों को असंगता के शस्त्र से काट दो। और दूसरी जगह पे भगवान ने कहा है ज्ञान शस्त्र से काट दो। ये अज्ञानता के कारण सारा संसार अज्ञानता के ऊपर टिका है, इसलिए ज्ञान के शस्त्र से इसको काटो। ज्ञान जब आएगा तो उसके साथ, अच्छा ज्ञान बोल दिया एक जगह क्या बोल दिया, अब क्या बोला? असंगता मतलब वैराग। हाँ, असंगता का अर्थ क्या है? वैराग। और पहले चौथे अध्याय में क्या बोला है? ज्ञान शस्त्र से काटो। अब आप कुछ मत करो, आप करो क्या? भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान की भक्ति के दो हैं फल, जिनका नाम है दो बच्चे। और क्या है वो दो बच्चे? काम कितना आसान हो गया। अब आप कहां से ज्ञान लाओगे, कहां से वैराग लाओगे? आपसे तो होगा नहीं। आप भगवान की भक्ति करो, अपने आप दो उसके फल प्रकट होएंगे और ये अपने आप कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कितना सरल हो गया, सरल हो गया कि नहीं हो गया? हरे कृष्ण जपते हुए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ करना नहीं है। हम बच्चे अपने आप भक्ति पैदा करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको घर भी नहीं बनाना है। ये तो उसका फल है, ये तो भक्ति का फल है, ज्ञान और वैराग। फल और बच्चे का अर्थ एक ही, बच्चे का अर्थ कोई बच्चा नहीं है, फल है, फल को बच्चा बोलते हैं। तो बस भक्ति करोगे तो अपने आप ये संसार का जो जड़ें गहरी हैं वो कट जाएंगी। तो असंग का मतलब वैराग हो गया और ज्ञान का मतलब हो गया भगवान के बारे में जानकारी। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, बोला भाई पेड़ को काट के फिर क्या करें, जाके लकड़ियां इसकी बेचें? पेड़ को काटने के बाद करना क्या है वो इसके बाद वाला श्लोक है, कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि पेड़ जब कट जाएगा तो फिर यहां से हम मुक्त हो जाएंगे। तो फिर हमको वो जगह ढूंढनी चाहिए जहां से कभी वापस न आना पड़े। और फिर उस जगत में वहां जाने के लिए क्या हमारे गुण होने चाहिए, क्या हमारा अधिकार होना चाहिए, ये दो श्लोक कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। श्री प्रभुपाद की, पुरुषोत्तम योग की, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। देखिए वो पंडित जी, वो हमारे बड़े वो हमारे बहुत बड़े पंडित जी थे, हमने उसको हमारे से भी अच्छा जिनको ज्ञान है उनको भेजा था कल आपकी सेवा में, रमाकांत प्रभु जी बड़े बुद्धिमान है। हम तो क्या है कि आपको नमक मिर्ची ऐसे चटपटा करके बना के देते हैं। हमारा आइटम हमारा फ्राइड भी है, चटपटा। शास्त्र को सरल बनाते हैं हम, और कुछ भी नहीं। अरे कृष्ण, एक घंटा। हाँ जी, किताब किताबों से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान भक्त की कृपा से हमारे को भक्ति मिलती है। भक्ति किताबों से नहीं मिलेगी। इसका अर्थ ये है, भक्ति जायते भक्त संगे, भक्ति का जन्म ही भक्तों के संग में होता है, किताबों से भक्ति नहीं मिलती है। भगवान ने भक्ति न खुद देते हैं, न स्वयं भगवान देते हैं, न ही किताबों में रखी है। इसकी सोल एजेंसी जो पूरे की पूरा इसका टीका भक्तों को दे दिया है। भक्ति चाहिए तो भक्तों के दरवाजे के ऊपर जाके खटखटाओ कि हमें भक्ति चाहिए। और कहीं से नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा।